सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
सो लॉर्ड भगवान कहते हैं कि कब ध्यान सफल नहीं होता है, कब ध्यान सफल नहीं होता है। कहते हैं न अति अस्नतः तू योगो अस्ति। अति अस्नतः, अति मतलब ज्यादा, जो ज्यादा खाता है तो उसका भी ध्यान सफल नहीं होगा। न च एकांतम अनस्त, जो एकदम नहीं खाता है उपवास करता है उसका भी ध्यान नहीं होगा। न च अति स्वप्नशीलस्य, वो जो बहुत ज्यादा सोता है, बहुत ज्यादा सोता है उसका ध्यान भी सिद्ध नहीं होगा, सफल नहीं होगा। जागृतो नहीं बचा अर्जुन, और जो सोता नहीं है खाली जागता रहता है उसका भी ध्यान सिद्ध नहीं होगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सब जगह अति वर्जित है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ज्यादा उपवास भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सोना भी नहीं है, ज्यादा जागना भी नहीं है। और कब ध्यान सफल होगा, तो कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। ध्यान सफल कब होगा, भगवान कहते हैं अगर आप युक्त आहार करें, परिमित आहार जितना आगे बताया गया उतना ही अगर आहार करें। विहार, विहार मतलब चलना, देखो कितना चलना चाहिए वो भी शास्त्र ने बता दिया है, एक कोस चलना चाहिए, 8 माइल चलना चाहिए, कई लोग चलते ही रहते हैं सारा दिन, उतने युक्त विहार है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपकी चेष्टा भी जो है वो भी युक्त होनी चाहिए। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, स्वप्न मतलब सोना और जागना, ये भी युक्त होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। योगो भवति दुख कहा, तो ऐसा योग आपके दुख का निवारण करेगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका दुख जो है चला जाएगा, सांसारिक दुख चला जाएगा। फिर भगवान कहते हैं यदा विनियतम चित्तम, आपका जो है समाधि कैसे होगी, साधक कैसे समाधिस्थ होगा, यदा जब विनियतम, विनियतम संयत, विशेष रूपेण नियतम, संयत अगर आपका मन होगा। और क्या होगा, नंबर दो, चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, चित्तम मन, मन कहाँ होना चाहिए, आत्मा में होना चाहिए। हमारा मन कहाँ रहता है, संसार में रहता है। तो एक तो पहले उन्होंने कहा कि आपका मन संयमित होना चाहिए, मन संयमित होने का मतलब विषयों से मन को हटाना है। फिर उस मन को क्या करें, मन तो हटा लिया, बोले उसको फिर अब आत्मा में लगाओ, चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, उसको आत्मा में लगाओ। और निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, निष्प्रिय कोई फिर कामना नहीं रहनी चाहिए, सर्व कामनाओं से निवृत्ति, कोई भी संकल्प, कोई भी कामना, कोई भी डिजायर नहीं रहनी चाहिए। युक्त इति उच्चते तदा, युक्त, उस टाइम में हम कहेंगे युक्त हो गए। किससे युक्त हो गए? आत्मा से युक्त हो गए, भगवान से युक्त हो गए। तीन चीजें करनी होगी। पहला, आपका चित्त जो है वो संयमित होना चाहिए। वो चित्त कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना है, आत्मा में लगाना है, ये दूसरा है। तीसरा, निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, उस चित्त के अंदर, उस मन के अंदर कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, फिर ये चित्त की एक उपमा देते हैं। ये उपमा कौन देते हैं? स्मृता। यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सो उपमा स्मृता। सिद्ध लोग जिन्होंने इसको अनुभव किया है, जिन्होंने इसकी तजर्बा की है, वो इसकी एक उपमा देते हैं। क्या देते हैं? जैसा दीप एक निवातस्थ स्थान में जहाँ हवा नहीं है, तो उसकी लौ कैसे रहेगी? लौ जो है स्थिर रहेगी, लौ चंचल नहीं होगी, मगर प्रकाश होगा। देखो, इसमें यहाँ पर एक जानने की बात है कि उस लौ के अंदर प्रकाश होगा मगर हिलती नहीं है। वैसे ही योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योग आत्मना। तो जिसका यत चित्तस्य जिसका मन जो है संयमित है, कंट्रोल्ड है, युञ्जतो योगम आत्मना है, और योग का अनुष्ठान या समाधि करता है, ऐसे व्यक्ति का जो मन जो है ना, वो फुल्ली प्रकाशित होगा, दीप की तरह प्रकाशित होगा। देखो, अंधकार नहीं होगा वहाँ, दीप की तरह पूरा प्रकाश होगा और उसमें चंचलता नहीं होगी, वो स्थिर होगा। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्चन आत्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम, जब सारी मन की वृत्ति शांत होगी। उपरमत हमने अपने को, मन को वहां से, संसार से हटा लिया है। कितना हटा? निरुद्धम मतलब एक भी वृत्ति नहीं है, अब एक भी वृत्ति नहीं है। उपरमत चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग सेवया मतलब योग का अभ्यास करना होगा। ये एक दिन में नहीं होगा, ऐसा अभ्यास बहुत दीर्घ काल तक करने से ऐसी स्थिति आती है कि आपका मन है मगर मन में कोई वृत्ति नहीं है, मन है मगर मन में कोई वृत्ति नहीं है। हमने तो कई बार ऐसा देखा है, हर रात को हमारा जो है मन वृत्ति शून्य हो जाता है, हर रात में वृत्ति शून्य हो जाता है। तो इसको वृत्ति शून्य किया जा सकता है। यत प्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग सेवा से करना होगा। योग सेवा मतलब इसके लिए अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। यत्र चैव आत्मना आत्मनम पश्चन आत्मनि तुष्यति, फिर वहां क्या होता है? च एव आत्मना, आत्मना मतलब शुद्ध अंतकरण। आत्मानम मतलब जो आपका आत्मा जो है वो कैसा है? सेल्फ रिपल्जेंट है, सेल्फ रिपल्जेंट जो आत्मा है, चेतन रूप जो आत्मा है, उसमें पश्यन, उससे फिर साक्षात्कार होता है। उस आत्मा में जाके फिर आपका साक्षात हो गया और फिर क्या होता है? तुष्यति, आप संतुष्ट हो गए। देखो, ये संतोष और बाहर के संतोष में बहुत फर्क है। आप संतुष्ट हो गए। अच्छा, तो ये सुख कैसा है? सुखम आत्यांतिकम, ये ऐसा सुख है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते आप इसको। सुखम आत्यांतिकम। अब कहते हैं यत तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, मगर ये सुख जो है इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, इंद्रियों से ग्रहण करने वाला सुख नहीं है। अब आपको अपने पसंद की अगर आपको जो है कोई छवि मिल जाए तो आपको आंख की जो है सुख मिलता है। आपके पसंद का अगर कुछ अपने गाना या भजन सुन लिया, आपको कान को सुख मिलता है। तो ये आपके इंद्रियों ग्राह्य सुख नहीं है, मगर कहते हैं बुद्धि ग्राह्य है। तो बुद्धि ग्राह्य कैसे हुआ? तो बुद्धि ग्राह्य इस तरह से हुआ, कहते हैं कि जब आप समाधि में बैठते हो तो आपकी अंतिम वृत्ति, मतलब वृत्ति लास्ट वृत्ति लय होने वाली है, उसके ठीक पहले वाली वृत्ति, वो कौन सी वृत्ति है? ब्रह्माकार वृत्ति है। वो विषयाकार वृत्ति नहीं है, वो ब्रह्माकार वृत्ति है, जिसके बाद में वो वृत्ति लय हो जाती है। उस वृत्ति में उस आनंद की अनुभूति होती है, लास्ट वृत्ति, अंतिम वृत्ति। वो वृत्ति कैसी है? ब्रह्माकार वृत्ति है। उस वृत्ति के बाद में लय हो गया मन, उस वृत्ति के अंदर हम उसको अनुभव कर सकते हैं। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः, उसके बाद में जब साधक आत्मा एवं समाधि में स्थित हो जाता है, फिर जो है न चलती, फिर चलता नहीं है। चलता नहीं मतलब क्या है? क्या वो फिर संसार में गिरता नहीं है, संसार से विचलित नहीं होता है, या उस टाइम में उसका ईगो जो है, उसका अहंकार जो है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, वो खत्म हो गई। अब फिर से ये तीन चीजें वापस नहीं आएंगी, ये तीन चीजें वापस नहीं आएगा, वो व्यक्ति फिर संसार में फंसता नहीं है, संसार में विचलित नहीं होता है, उसका अहंकार का नाश हो जाता है कि मैं जीव हूं, ये उसका भाव खत्म हो जाता है। यम लद्वाचा परम लाभम मन्यते नादिकम तथा, और इसके लाभ के बाद में फिर वो सोचता है इससे बड़ा कोई लाभ और हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई लाभ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता इससे बड़ा कोई लाभ? क्योंकि जो भी आपको लाभ मिलेंगे, जो भी सुख आपको जगत से मिलते हैं, वस्तुओं से मिलते हैं, या किसी व्यक्ति से मिलते हैं, या किसी अन्य बीइंग से मिलते हैं, तो वो सब कहाँ से मिलते हैं? उन सब का सुख का स्रोत एक है, उन सारे सुखों का स्रोत एक है, वो है आत्मसुख। जब आत्मसुख मिल गया, अब बताओ उससे बढ़ के और कौन सा सुख हो सकता है? और कोई सुख तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचार लेते, यस्मिन स्थितो उसमें स्थित हो जाने के बाद में, आत्मा में स्थित हो जाने के बाद में, न दुखे न गुरुनापि, भारी से भारी दुख आ जाए, भारी से भारी दुख आ जाए, न विचालित, न विचालित का मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं होती, उसमें कोई फर्क नहीं आता है, कोई उसमें उद्वेग नहीं होता है, वो उसके लिए रोता नहीं है, डरता नहीं है, जो हो गया ठीक है। देखो जो भी दुख आता है वो अनात्मा से आता है, और अनात्मा की सारी वस्तु हम जानते हैं कि ये सारी की सारी जड़ है और नाशवान है, सारी वस्तुएं जड़ है और नाशवान है। अब ये ज्ञान होने के बाद में अगर हमको सुख का सागर मिल गया, अब सारी दुनिया अगर खत्म हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा शरीर खत्म हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, अनात्मा है, एक दिन तो जाना है, इसने जाए, न दुखे न विचार लेते। अब 23वां श्लोक देखते हैं।
न विद्या दुख
तम विद्या
तम विद्या दुख संयोग
तम विद्या दुख संयोग
वियोगम योग संगीतम
वियोगम योग संगीतम
सनिश्चयेन योक्तव्यः
सनिश्चयेन योक्तव्यः
योगो निर्विण्ण चेतसा
योगो निर्विण्ण चेतसा
तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगीतं सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा।
अब भगवान कहते हैं कि तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तम मतलब क्या? चित्त वृत्ति निरोध अवस्था, जैसा वो पीछे बताते आ रहे हैं कि आपका चित्त कैसा होना चाहिए समाधि के समय, चित्त वृत्ति निरोध, कोई उसके अंदर वृत्ति नहीं होनी चाहिए। चित्त वृत्ति निरुद्ध अवस्था, इसका मतलब क्या? मन जागृत स्वप्न सुसुप्ति निरुद्ध अवस्था है। आप न तो जागृत अवस्था में है, न स्वप्न में है, न सुसुप्ति है, कोई निरुद्ध, कोई अवस्था का यही नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को पूरा जगत से जो है अपने को विड्रॉ कर लिया है, उपरम कर लिया है। अच्छा, दुख संयोग वियोगम, देखो ये योग की परिभाषा है, हैं हम एक योग की परिभाषा जानते हैं, चित्त वृत्ति निरोध योग, या भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इस समझ में आता है योग। योग मतलब भगवान से, परमात्मा से जुड़ना। मगर यहां कहते हैं कि दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग वियोग, ये है योग। अच्छा कैसे है भाई? तो भगवान ने 20-21-22 में बताया वो क्या है, बोले वो वियोग है, वियोग है। किससे वियोग है? दुख के संयोग से वियोग है। देखो दुख के संयोग से भी योग है, मतलब क्या हुआ? आपको दुख का संयोग नहीं होगा, दुख का संयोग से वियोग, दुख के संयोग से भी योग हो गया। डिसयूनियन फ्रॉम यूनियन ऑफ सोरो, साधारणतः योग माने क्या होता है, योग माने संयोग, जुड़ना, जुड़ जाना, ये साधारण माने हैं। मगर यहां वियोग कहां, वियोग किससे, बोले दुख से वियोग हो जाएगा। अरे यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं, दुख से वियोग हो जाएगा। अच्छा, दुख से वियोग होने का मतलब क्या हुआ कि आपका उपाधि से और उपाधि जनित जितने भी ज्ञान और अनुभव है उनसे जो है वियोग हो जाएगा। दुख कहां से आते हैं, दुख उपाधि से आते हैं, है? हमारे शरीर से आते हैं, और उपाधि जनित जो ज्ञान हमको बाहर से हमारी इंद्रियां लाके देती हैं, जो हमको अनुभव बाहर से होता है, उससे वियोग हो जाएगा। तो दुख तो यहीं से आता है ना, या तो शरीर से आ रहा है या अनात्म वस्तुओं से बाहर से जगत से आ रहा है, तो उससे वियोग हो जाएगा, उससे वियोग हो जाएगा। अच्छा, आगे भी भगवान ने कहा है, यही संस्प्रदा भोगा दुख योनो एवते आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। आपने सुना ये श्लोक, कोई नहीं माथा हिला रहा है। अरे भाई, पांचवें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं इसे। पांचवें अध्याय में भगवान ने कह रहे हैं कि यही संस्प्रदा भोगा दुख योनो एवते, जो भी आप अपनी इंद्रियों से स्पर्श करते हैं, पांच ज्ञान इंद्रियों से पांच विषयों का जो हम स्पर्श करते हैं, बोले ये सारे संस्पर्श क्या हैं, बोले ये भोग सारे दुख की योनि हैं, दुख की योनि, ये सारे के सारे आपको दुख ही देंगे। क्यों दुख देंगे, अनात्म वस्तु है, अनात्म वस्तु है, इसका नाश अवश्य है, किसी का नाश तुरंत होता है, किसी का नाश जो है बहुत लंबे समय के बाद में होता है, मगर नाश निश्चित है। इसलिए जिस दिन वो वस्तु भक्ति या जो कुछ भी है वो नाश होगा, उस दिन हमको दुख देगा। इसलिए भगवान कहते हैं सारे के सारी जो है दुख की योनि है। आद्यंतवंत कौन थे, इनका आदि है अंत है, ये कौन थे अर्जुन, ये आदि और अंत वाले हैं, ये शुरू भी होता है और अंत भी होगा। हम लोग सब अभी घबराए हुए हैं कि कोरोना का क्या होगा, अरे आदि हुआ है अभी तो, अंत भी आएगा उसका, ये आत्मा थोड़ी ना है, क्या है ये, अनात्मा है, इसका आदि हुआ है, छह महीने पहले आदि हुआ है, उसका बिगनिंग हुआ है, वुहान में हुआ है, इसका अंत भी आएगा। आद्यवंत कौनते है न तेसु रमते बुध, बुद्ध जो है जो ज्ञानी लोग है उसमें नहीं रमते हैं। अरे हाँ, हो जाएगा, और दो चार महीने में दवाई आ जाएगी, दवाई आ जाएगी तो आप फिर जैसे नॉर्मल फ्लू होता है ना, आप डरते नहीं हैं। अच्छा, फ्लू हुआ, दवाई अपने पॉकेट में डाली, आप चलते हुए अपना गाड़ी भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, घूम भी रहे हैं, वैसे ही इसका भी आ जाएगा, दवाई आ जाएगी, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ उसकी दवाई ले लेंगे, और क्या, मर थोड़ी ना जाना है। अभी भी लोग बिना दवाई के केवल 2-3% ही मर रहे हैं, और कहाँ मर रहे हैं ज़्यादा, आक्रांत तो मिलियंस मिलियंस में हो गए हैं सारी दुनिया में, मरे कितने हैं सब मिला के 2 लाख इन ऑल ओवर वर्ल्ड, इतनी तो मरे हैं। और उसको देखिए परसेंट के हिसाब से निकाल के देखिए, परसेंट केवल 2-3% है, और उसमें जो वृद्ध भी हैं, वृद्ध भी हैं, दूसरे भी हैं। अच्छा, तो ये किसका योग होता है, देखो दो ही चीजें हैं, एक तो हमारा आत्मा है, आत्मा का आत्मा के साथ में योग नहीं होता है, आत्मा का आत्मा के साथ में योग नहीं होता है। तो किसका योग होता है, मन जो है वो अनात्म वस्तु में लगा हुआ है, उसको वहां से जब हटा लेते हैं और आत्मा में लगाते हैं तब उसको हम योग कहते हैं। तो यहां पर विरुद्ध लक्षण प्रतिपादन किया गया है, दुख संयोग वियोगम इसका टेक्निकल वर्ड कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं कि ये विरुद्ध लक्षण प्रतिपादन कहते हैं इसको। अच्छा, स निश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्विन्न चेतसा, अनिर्विन्न चेतसा मतलब जिस चित्त में उद्वेग नहीं है, जिस चित्त में उद्वेग नहीं मतलब जिस मन में उद्वेग नहीं है, जिस मन में उद्वेग नहीं है, स निश्चयेन योक्तव्य, तो उपयुक्त फल वाला योग, उपयुक्त फल वाला योग मतलब जैसा आगे बताया कि आपको कितना सुख मिल जाएगा, ऐसा योग बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। भगवान कहते हैं हम सबको ये करना चाहिए, मगर उसके लिए स्पेशल चित्त चाहिए, अभ्यास करके वैसे हमको चित्त को मन को बनाना है। अच्छा, जिस योग की चर्चा चल रही है वो योग दुख से वियोग कराता है। दुख से वियोग कराता है मतलब आत्यंतिक सुख की तरफ ले जाता है, आत्यंतिक सुख मिल जाएगा, आत्यंतिक सुख मिल जाएगा। अभी हमको हमारा अनुभव क्या है, अभी हमारा अनुभव है हमको दुख का अनुभव होता है, बीच बीच में कभी थोड़ा सा सुख मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं, फिर दुख खड़ा हुआ दरवाजे पर फिर आ जाता है। भगवान कहते हैं कि सारा का सारा दुख का वियोग हो जाएगा, सारा दुख वियोग हो जाएगा और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होगी। और इस योग से योगी फिर गिरता नहीं है, संसारी नहीं बनता, फिर वो अपने BMI से शरीर मन बुद्धि से और आइडेंटिफाई नहीं करता है। वो उसको पता लग गया है कि सारी की सारी चीज़ें अनात्म वस्तुएं हैं, हमको इससे तादात्म्य नहीं करना है, आइडेंटिफाई नहीं करना मतलब तादात्म्य नहीं करना है। अच्छा, यह योग मैं निश्चित रूप से करूँगा, भगवान कहते हैं निश्चित रूप से करूँगा। भगवान बुद्ध ने जब ये संकल्प लिया कि मेरे को जो है उस परमात्मा को जानना है, उसको अनुभव में लाना है, तो उन्होंने कहा देह वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, मेरा शरीर छूट जाए कोई फर्क नहीं है मगर मैं सिद्ध होकर रहूँगा। देखो ऐसा संकल्प चाहिए, ऐसा निश्चय चाहिए कि शरीर गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, मगर हमको सिद्धि लेनी है, हमको उसका अनुभव करना ही है। निश्चयहीन है, एक संकल्प ले ले कि मैं जरूर यह योग करूँगा और चाहे सारा जीवन लग जाए क्या फर्क पड़ता है हमें, हमें तो करना ही है इसको। अनिर्विण्ण चेतसा उद्वेग रहित चित्त, मन जिसमें क्लांति नहीं है उदासी नहीं है उसको उद्वेग रहित चित्त कहते हैं। कोई क्लांति नहीं है, कोई उदासी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। और इस निश्चय के बारे में मधुसूदन सरस्वती बताते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक छोटी सी चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया, अब उसके अंडे उसने दिए और समुद्र उठा के सारे अंडे ले गया। अब वो चिड़िया कहती है समुद्र से तुम मेरे अंडे दे दो, समुद्र कहता है नहीं देंगे। चिड़िया ने संकल्प लिया कि जारी जिंदगी लग जाए मैं एक एक बूंद लेके चोंच से इसका समुद्र का पानी जो है उठा के दूसरी तरफ डालूंगी और डाल के अपने अंडों को वापस लूंगी। जब ये संकल्प ले लिया वो करती जाए करती जाए करती जाए, तब उसके बाद में नारद जी ने जाके बता दिया गरुड़ को। गरुड़ जो है पक्षीराज है, पक्षीराज राजा को बता दिया तुम राजा हो, तुम्हारी एक चिड़िया के साथ में ऐसी घटना घट रही है, तुम कुछ करो। और पक्षीराज गरुड़ जब दौड़ के उड़ के आए वहां पर, समुद्र घबरा गया और उसने तुरंत दे दिए अंडे वापस कर दिए। देखो ऐसा निश्चय अगर हो ना तो फिर जो है भगवान भी सहायता करते हैं, मत सोचो कि मैं कमजोर हूं, ऐसा निश्चय रूप संकल्प नहीं ले सकता, मेरे में तो बहुत कमियां हैं, मेरे जैसा कोई पापी है दुनिया में? हम सब अपने आप को इतना पापी महसूस करते हैं, कितनी गलतियां हमने की हैं, कितने गलत काम किए हैं, और बार बार हम सोचते हैं हम जैसे पापी का कुछ कल्याण होगा, कभी नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। देखो आप सब लोग जो आते हो क्लास के लिए तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सारा का सारा जो है वेल प्लान भगवान का है, सारा का सारा वेल प्लान है कि आप लोग आएंगे, आप लोग सीखेंगे, उसके बाद आस्ते आस्ते उस पथ के ऊपर में रास्ते के ऊपर चलना शुरू करेंगे तो उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। हम लोग के साथ में क्या है, तपोवन जी महाराज जी का, गुरुदेव का, गुरु जी का, इन सब का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद के से ही तो चल रहा है सब कुछ, उनके आशीर्वाद से ही चल रहा है। तो अभी तक का अगर हम थॉट फ्लो देखें तो श्लोक नंबर 1 और 2 में कर्मयोग की प्रशंसा है और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कर्मयोग अवश्य करें। श्लोक नंबर 3 में बताया कि कब कर्मयोग छोड़ना चाहिए, तो 4th में कहते हैं कि योगारूढ़ होने पर कर्मयोग छोड़ देना चाहिए। जैसे ही आप योग में आरूढ़ हो गए तो आपको कर्म करना छोड़ देना चाहिए। 5-6-7 के अंदर योगारूढ़ के लिए मन मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं, मित्र मन से ही सिद्धि मिलेगी, ऐसा बताया गया। 8वें और 9वें श्लोक में बताया कि योगारूढ़ के लक्षण क्या हैं। अब हमको पता भी तो होना चाहिए हम योगारूढ़ हो गए कि नहीं, तो उसके लक्षण भी बता दिए भगवान ने। फिर 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसा योग करना चाहिए। फिर 11 से लेकर 19 तक निर्विकल समाधि करने की व्यवस्था, आसान आसन आहार विहार इन सब आदि के बारे में चर्चा की 19 तक। 20 से लेके 23.5 श्लोक तक, 23.5, 20 से लेके 23.5 तक निर्विकल समाधि को एक्सप्लेन किया। अब भगवान जो है निर्विकल समाधि करने के तरीके हम उसका फल बताने जा रहे हैं। ये आपका श्लोक नंबर 24 से लेके 28 के अंदर में है। श्लोक नंबर 24।
संकल्प प्रभवान कामान,
संकल्प प्रभवान कामान,
त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम, विनियम्य समन्ततः, विनियम्य समन्ततः, संकल्प प्रभवान कामान, त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम, विनियम्य समन्ततः।
संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, संकल्प से उत्पन्न हुई समस्त कामनाओं को निशेषता से अर्थात लेस मात्र भी शेषता रखते हुए निर्लेप भाव से छोड़कर। संकल्प, देखो कामना सारी जो है संकल्प से आती हैं। संकल्प पहले जो है प्री स्टेज ऑफ डिजायर जो है वो संकल्प होता है। तो सारे संकल्प में क्या होता है, सारे संकल्प में एक बुद्धि होती है, उसको हम कहते हैं शोभन अध्यास। शोभन अध्यास, शोभन अध्यास क्या है कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये बीइंग जो है, ये हमको चीज जो है सुख देगी, ऐसा हम अध्यास कर देते हैं, उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं, शोभन अध्यास। अच्छा, ये शोभन अध्यास क्या है, अशोभन वस्तुओं के ऊपर शोभन अध्यास डालते हैं। अशोभन क्या है, सारी अनात्म वस्तुएं वो अशोभन है, उनमें तो सुख है ही नहीं, और उसमें शोभन अध्यास डालना मतलब हम सोचते हैं कि इन वस्तुओं और व्यक्तियों के अंदर में सुख है, ये चीज हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये चीज हमें प्राप्त करनी चाहिए, इसको हम शोभन अध्यास कहते हैं। तो शोभन अध्यास किसके ऊपर कर रहे हैं, अशोभन वस्तुओं पर कर रहे हैं, अनात्म वस्तुओं पर कर रहे हैं। उन अनात्म वस्तुओं में हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें कोई सुख नहीं है, मगर हम ऐसा करते हैं, और ये सर्व काल्पनिक सुख में हम फंसे हुए हैं। भगवान कहते हैं सर्वान कामान अशेषत तत्व, ऐसी कामना को छोड़ो, अशेषत एक भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी एकदम नहीं बचनी चाहिए, यानी कामना लेस मात्र न हो। जिसका मन कामना से मुक्त है वो संसार से मुक्त हो जाएगा। जब तक आपके मन में कामना है तब तक आपका मन निरुद्ध नहीं हुआ। निरुद्ध नहीं हुआ मतलब उसके अंदर वृत्तियां अभी जो हैं, क्योंकि कामना है, अगर डिजायर है, कामना है, तो वृत्ति भी आपके अंदर में है। तो किस किस्म का त्याग होना चाहिए, भगवान जो है बताते हैं कि आपको सारी कामनाएं का त्याग होना चाहिए। तो वो त्याग की तीव्रता या त्याग की मात्रा कैसी होनी चाहिए, इसको बताने के लिए संत लोग कहते हैं कि विषय आप जानो जैसे काग विष्ठा, ड्रॉपिंग ऑफ ए क्रो। आप काग विष्ठा को छुओगे, कभी नहीं। इसी तरह से विषय क्या है, बोला इट इज इक्वल टू काग विष्ठा, नहीं छुएंगे इसको काग विष्ठा को। या सूनक बांत पायस, सूनक मतलब कुत्ता, बांत मतलब वोमिट, पायस मतलब, आप पायस तो अच्छी तरह जानते हो, आपने कुत्ते को पायस खिला दिया, पायस खिला के अब कुत्ते ने वोमिट कर दिया, क्या आप उस वोमिट को छुओगे, ये तो पायस है, देखो इतना वैराग्य आना चाहिए विषयों के प्रति, इतना वैराग्य होना चाहिए आप उसको समझ लो कि क्या है वो वस्तुएं, या किसी मृत सुंदरी रानी के देह में जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं, फूल चुका है, आप उसको स्पर्श करना चाहोगे? नहीं करोगे। तो विषयों को भी आपको इस तरह से देखना है कि इनको हमको छूना नहीं है। अच्छा, ऐसी भावना विषयों के प्रति होनी चाहिए, कामनी कांची कीर्ति में प्रति ऐसी भावना हो। देखो हमारी सारी डिजायर जो है महात्मा लोग बोलते हैं तीन चीजों के अंदर डाल सकते हैं, कामनी स्त्री, कांचन वेल्थ, और कीर्ति फेम। सारी आपकी जितनी भी कामनाएं देखिए ये तीन के अंदर एक न एक हो जाएगी। या आप उसको कह सकते हो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा। देखो पुत्रेष्णा कहाँ, देखो स्त्री आ गया ना, पुत्र कहाँ से होगा, स्त्री से ही होगा, वित्त वेल्थ हो गया, लोकेष्णा हमको जो है यश चाहिए, हमारा नाम पेपर में आना चाहिए, लोकेष्णा। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। इस किस्म के परम वैराग्य से ज्ञान तथा निर्विकल समाधि की सफलता मिलेगी। जब तक आप ये विवेक नहीं कर लोगे, ठीक से अच्छी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर लोगे आत्मा और अनात्मा के अंदर, उनके लक्षण नहीं समझ लोगे, तब तक आप अनात्म वस्तु के छोड़ नहीं पाओगे, छोड़ नहीं सकते हैं। मनसा एव इंद्रग्रामम विनियम में समंततः, सारी इंद्रियों को विवेक से नियंत्रण करना, हट से नहीं करना है, विवेक से करना है। आप हट करोगे तो फिर तो काम नहीं होगा, फिर तो आप तो फंस जाओगे फिर उसके अंदर में। सो बिना इंद्रियों के नियंत्रण से सफलता नहीं मिलेगी, मन विचिप्त रहेगा, कदाचित ध्यान होगा, कभी कभी हो सकता है। अगर आपके अंदर जो है कामना भी रहेगी और ध्यान भी करोगे तो कभी कभी सिद्धि मिल सकती है, मगर हरदम आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पर ये वाक्य पूर्ण नहीं है, इसको वाक्य को पूर्ण करने के लिए सयोग योक्तव्यम पिछले श्लोक से लेना पड़ेगा। सारी गीता में केवल एक यही श्लोक है जहाँ पर हमको पिछले श्लोक से एक पाद उठा के लाना पड़ता है टू मेक इट कम्प्लीट। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि हम अपने मन को कैसे उपरम करें, अनात्म वस्तुओं से उपरम कैसे करें, हटाएं कैसे उसको, तो भगवान कहते हैं 25वें श्लोक में
शनै शनैरुपरमेत् शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्याधृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्याधृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्।
शनै शनै उपरमेत्, शनै शनै मतलब धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करें, धीरे धीरे करें। अच्छा, इसमें कई स्टेप्स हैं, स्टेप्स का नजरअंदाज नहीं करें, कोई स्टेप्स को जो है छोड़े नहीं है, कोई स्टेप्स को छोड़े नहीं, धीरे धीरे अग्रसर करें। उपरमेत सर्व कर्म संन्यास एवं यात्रा भीतर की ओर शुरू। देखो उपरम कर रहे हैं हमको यात्रा, हमको कहाँ जाना है, हमको भीतर जाना है, तो भीतर जाने के लिए हमको संसार से तो अब उपरम होना ही है, छोड़ना ही है, उसको नहीं छोड़ेंगे तो हम भीतर यात्रा कैसे करेंगे। तो उपरमेत, तो उपरमेत होने की एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है। क्या सीढ़ी है? बोले पहले, सबसे पहले वाक भूमि जय करो। वाक भूमि जय क्या है? तो वाक आदि सब इंद्रियों को जीतो, शब्द आदि विषयों की वृत्ति नहीं आनी चाहिए, केवल मन मात्र स्थित हो, मन होगा। अब इंद्रियां जो है उनको हमने नियंत्रण में ले लिया, इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया, वाक भूमि जय। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या है? मनोभूमि जय, मन एवं उसकी वृत्तियों पर जाए। मन में वृत्तियां नहीं होने चाहिए, अभी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि में कर्तृत्व है, है, पहले वाक भूमि जाए, उसके बाद मनोभूमि जाए, उसके बाद में अहंकार भूमि जाए, क्योंकि बुद्धि के अंदर कर्तृत्व है, कर्तृत्व मतलब अहंकार। अब उस अहंकार को भी हमको नाश करना है, उसको नाश कर दिया, अब क्या बचा? तो एमनेस बच गया, एमनेस, एमनेस है केवल। अच्छा, अब मैं माता हूं, पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं बंधु हूं, ये सब खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया। अब ये पहचान आपकी सारी खत्म हो गई। अब क्या आपके पास बचा? कॉस्मिक आई बच गया, स्मॉल आई खत्म हो गया, अहंकार का नाश हो गया, अहंकार भूमि जय हो गई। चौथा जो है मत महत्तत्व भूमि जय, मतलब सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी भी खत्म हो गई। हम सेंस ऑफ इंडिविजुअल खत्म हो गई, अब आप कहाँ पहुंच गए? शांत आत्मा यानी निरुपाधिक आत्मा में आपका मिलन हो गया। अच्छा, कैसे करना है आपको? बुद्ध्या धृति गृहीतया, इस तरह विवेक से चलें, धृति को पकड़ कर रखें, यात्रा को पकड़ कर रखें, छोड़े नहीं, उकताने की दरकार नहीं है। देरी हो गई है, क्या करें, छोड़ दें? नहीं, कभी नहीं, अंतिम सांस तक आप करते रहें इसको, अंतिम सांस तक करते रहें। कैसे? जैसे आर्मी जो है ना, दुश्मन का कोई पोस्ट को अगर ले लेते हैं ना, फिर क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं अपने दुश्मन को, उस पोस्ट को लोग पकड़ के रखते हैं। उसी तरह से आप अपना संकल्प को जो है पकड़ के रखिए, धीरे 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 आप जो है देखेंगे, आपको सुगंध, आपको चंदन की सुगंध मिल रही है, कि जो है भगवान के नूपुर की आवाज़ आ रही, देखो ये सब मन की चाल है, वहाँ फंसना नहीं। जैसे ये सब चीज़ें आपके अंदर वृत्तियाँ आने लगें, आप समझना मन जो है फिर चलना शुरू कर दिया है, ये सब मन की चाल है, सावधान होना होगा, मन हमको दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। अच्छा, आत्मसंस्तत्वम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, जब मन को शांत आत्मा में लाएं, उसके बाद आत्मा अनात्मा का चिंतन न करें। अब हम पहुंच गए, हम पहुंच गए उसके अंदर, वहां पहुंचने के बाद में अब उसके बाद में कोई चिंतन नहीं करना है, हम तो मन के बियॉन्ड जा रहे हैं ना, उसके पार जा रहे हैं, उसके पार जा रहे हैं, फिर चिंतन नहीं करें। अच्छा देखो, अगर आप चिंतन शुरू करो, अब देखो उसको समझो अच्छी तरह से, अगर हम आत्मा का चिंतन करते हैं तो आप निर्विकल्प समाधि से सविकल्प समाधि में आ गए। देखो अब आपको ये सब वर्ड तो अब अच्छी तरह से सब समझ में आने चाहिए, सविकल्प समाधि से हम निर्विकल्प समाधि में जा रहे हैं, निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए। अब आप उस टाइम में आत्मा के बारे में सोचना शुरू कर दिए, आत्मा के बारे में सोचना शुरू कर दिए, तो आपका वो सविकल्प समाधि हो गई। और मान लो आप अनात्मा का चिंतन करना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, आप संसार में गिर गए और नीचे आ गए, और नीचे आ गए। इसलिए आत्मसंस्थान मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, और चिंता मत करो, किसी किस्म की चिंता नहीं करनी, वहां पहुंच गए। लोग डर जाते हैं, अरे हम कहां हैं, हम हैं कि नहीं, मैं तो आत्मचिंतन कर रहा था, अरे लो सविकल्प समाधि में आ गया, निर्विकल्प पहुंच गए थे, जहां पर कोई वृत्ति नहीं है, आत्मा के कार, आत्मा के साथ आपका साक्षात्कार हो गया है, आप फिर चिंता शुरू कर दिए, आत्मा की चिंता शुरू कर दिए, मतलब निर्विकल्प समाधि से सविकल्प समाधि में आप आ गए। और या आपने अगर अनात्म वस्तु की चिंता शुरू कर दी, कि मेरे माता पिता कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, या अन्य किसी वस्तु की चिंता शुरू कर दी, आप कहाँ आ गए, आप संसार में गिर गए और नीचे आ गए। अच्छा, यह योग की परम श्रेष्ठ विधि है, ऐसा योग्य से परमो विधि। अच्छा, मान लो मन चंचल हो गया, होता भी तो है कई बार, मन चंचल हो गया तो क्या करें, तो भगवान कहते हैं
यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्, मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियमैतद्, ततस्ततो नियमैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्, आत्मन्नेव वशं नयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्।
यत यत निश्चरति मनः चञ्चलम् अस्थिरम्, जिस कारण से भी मन भटक जाए, जो भी कारण हो, हम बताएंगे आपको क्या क्या कारण से आपका मन भटक जाता है। जो भी कारण हो, मुख्यतः ये क्या है, एष्णात्रय है। एष्णात्रय मतलब पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये तीन एष्णा के कारण ही आपका मन भटकता है। और ये तीनों के तीनों क्या है, अनात्म चीजें हैं। तीनों, इन तीनों के कारण आपका मन भटकता है। तो मन की भटकन के दो कारण हैं, बस दो ही हैं, ज्यादा नहीं है, दो कारण हैं। क्या है भाई, विच्छेप हेतु क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो है आपका मन चला गया, मतलब विषयों में मन चला गया, विच्छेप हो गया। और लय हेतु मतलब निद्रा, आलस्य, असावधानता, डलनेस, विस्मरण आदि आ गया। या तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आ गए, ऑब्जेक्ट आ गए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आए तो क्या हुआ, आपको नींद आ गई, आलस आ गया, ये सब चीजें आ गई, असावधान हो गए, विस्मरण हो गया। तो विच्छेद एवं लय मन का भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप से आता है, भिन्न भिन्न रूप से आता है। अगर विषयों की तरफ गया तो आपका मन जो है विक्षेप हो गया, राजसिक हो गया है। चंचल माने मन विक्षेप में चला गया। देखो दो शब्द भगवान ने लिखे हैं, चंचल और अस्थिर। चंचल माने विक्षेप में चला गया, यानी मन राजसिक हो गया, माने कामना आ गई। देखो एक एक शब्द को समझने के लिए आपको समझना होगा कि भगवान ने ये वर्ड चंचल मन क्यों कहा। चंचल का माने है आपका मन में विक्षेप आ गया। मन विक्षेप आ गया मतलब मन राजसिक हो गया। मन राजसिक हो गया मतलब मन में कामना आ गई। मन में कामना आ गई मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध की चिंता आ गई। अस्थिर का मतलब मन तामसिक हो गया, मन को लय हो गया, नींद, आलस्य, विस्मरण, असावधानता, ये चीजें आ गई। तो आपका मन सात्विक था, वो मन गिर के या तो राजसिक हो गया या तामसिक हो गया, ये दो ही कारण हो सकते हैं। राजसिक होने का मतलब ये हुआ कि मन विषयों में चला गया। तामसिक होने का मन ये हुआ कि मन जो है निद्रा में चला गया, आलस्य में चला गया। दो ही चीजें घट सकती हैं। तो अब अगर मन चंचल और अस्थिर हो गया तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं ततः नियम एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। उस मन को बार बार जो है वहां से वापस लाओ। राजसिक है या तामसिक हो गया है तो उसको फिर वापस लाओ, फिर आत्मा के अंदर उसको लगाओ। अगर नींद आ जाए तो नींद को उत्साहित नहीं करो, उठ जाओ। नींद का कारण क्या है पता लगाओ, क्या हमने ज्यादा खाया है, क्या हमारा शरीर जो है थक गया है। थक गया मतलब जो आपने ज्यादा विहार किया है। आज हमने शुरू किया था ना युक्त आहार युक्त विहार, क्यों नींद आ रही है? हम भोजन करके अगर हम क्लास में बैठेंगे तो नींद आएगी। अब जैसे ही नींद आई तो चिंता करो, क्या भोजन ज्यादा हुआ है? क्या भोजन अगर ज्यादा होगा तो आपको नींद आ जाएगी। क्या हम ज्यादा टायर्ड हैं, थक गए हैं, इसलिए नींद आ रही है? और या मन खुशी पाने के लिए विक्षेप में लय हो गया, मन सोचता है खुशी इधर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अंदर खुशी है, क्योंकि मन को बराबर जो है सुख वहीं से पाता रहा है ना। तो मन सोचता है कि शब्द स्पर्श रूप कहां जा रहे हैं, ये कहां निर्विकल्प समाधि की तरफ जा रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है, आत्यंतिक सुख बोलते हैं, इतना सुख है ये तो कुछ नहीं पा रहे हैं, चलो फिर से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तरफ चलें, विषयों में फिर जाने की चेष्टा करता है। तो उसको फिर से विषयों से वापस लाओ उसको। आत्मा ने यह वसम नए, फिर से आत्मा में लगाए मन को। विक्षेप लय का ध्यान में बाधा प्रकट करते हैं। ये देखो राजस तमस, ये तो माया के गुण है ना। विक्षेप और लय ये दोनों ही माया के ही हैं, ये बाधा करेंगे ही, माया तो बाधा देने के लिए ही है। आप जहाँ सात्विक सत्वगुण की तरफ ज़्यादा बढ़ते जाओगे वो विक्षेप और लय आते जाएंगे, ये बाधा देंगे ही देंगे। भगवान कहते हैं कि तुम जो है विक्षेप लय की बाधा प्रकट न करते हुए सोचते हुए बार बार प्रयास करते रहो, बाधा हट जाएगी। हमें क्या करना है, हमें बार बार प्रयास करते रहना है। जितनी बार मन बाहर जाएगा, जितनी बार मन लय होगा, उतनी बार हम उसको वापस लाएंगे और वापस ला के फिर मन को उसमें लगाएंगे। और अगर मन लग गया हमारी चेष्टा के अंदर, अगर हम सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए, फिर क्या करें, न चिंतित, उसके बाद चिंता नहीं करो, उसके बाद चिंता नहीं करो। अगर चिंता किया तो क्या होगा, अगर आत्मा की चिंतन शुरू की तो आप सभी कल्प समाधि में आ गए, अगर अनात्मा की चिंता शुरू की तो फिर आप संसार में गिर गए। अच्छा, ये सब गाइडेंस देखो बहुत हाई लेवल के लिए है, हायर लेवल के लिए है ये सब। तो आत्मा में स्थित मन का लाभ क्या है, अब प्रश्न उठता है कि आप इतना हमको तकलीफ दे रहे हैं, ये तकलीफ के बारे में मिलेगा क्या, क्या लाभ होगा। भगवान आपने बहुत जो है कष्ट करके हमको समझा रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, मगर हमको लाभ क्या मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि आपको हम लाभ बताते हैं ना, 27वें और 28वें श्लोक में भगवान जो है इसका लाभ बता रहे हैं।
प्रशांत मनसं येनम् योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं प्रशांतमनसं येनम् योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं।
तो भगवान कहते हैं सुखम उत्तमम योगिनम उपैति, उस योगी को उत्तम सुख मिलता है, हैं? सुखम उत्तमम योगिनम उपैति। अच्छा, तो ये कैसे मिला, एफर्टलेसली, कुछ नहीं करना पड़ा। आप तो केवल चुप से बैठे हो, आप सात्विक माइंड लेके आप सीधा सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद में फिर एफर्टलेस हो गए एकदम, कुछ नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं करना है। दुनिया की कोई भी सुख प्राप्ति के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है, मगर आत्म सुख की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, एफर्टलेस है। ये जीवन मुक्ति का सुख है, ये समाधि का सुख है। देखो योग वासिष्ठ के अंदर 7 भूमिका बताई गई है, मन की 7 भूमिका, कभी योग वासिष्ठ पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। 4थी भूमिका के अंदर जो है मनुष्य साधक जो है ब्रह्मवित बन जाता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसे ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति का विदेह मुक्ति हो जाती है। विदेह मुक्ति मतलब उसकी नेक्स्ट जो है उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, विदेह मुक्ति गारंटेड है उसकी। और 5वीं भूमिका के अंदर में जो आदमी गया होता है, जो समाधि में जाता है, वो अपने आप जो है वापस आ सकता है, वो है 5वीं भूमिका। 6ठी भूमिका के अंदर वो अपने आप वापस नहीं आ सकता है, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। और 7वीं भूमिका के अंदर वो कभी वापस नहीं आता। तो ये योग वासिष्ठ की मनु की जो 5, 6, 7वीं भूमिका है, उस भूमिका का ये सुख है, सुखम उत्तमम योगिनम उपैति। तो योगी की मन की स्थिति क्या है, योगी की मन की स्थिति है प्रशांत मनसम, मन प्रशांत है, वृत्ति शून्य है, निरुद्ध अवस्था है, कोई भी संसारिक वृत्ति उसमें नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं है, कामना नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है। देखो हमारे गुरुदेव कहते थे ना, वृत्ति प्रवाह को ही मन कहते हैं, व्हाट इज माइंड, माइंड इज अ फ्लो ऑफ थॉट, वृत्ति प्रवाह को ही मन कहते हैं। अब वृत्ति नहीं है तो मन ही नहीं है, तो कैसे पाया प्रशांत मन को, कैसे पाया उस प्रशांत मन को, तो कहते हैं शांत रजसम, रजसम मतलब रजोगुण को शांत कर दिया। देखो रजोगुण को शांत किया, रजम से क्या होता है, विक्षेप होता है, शांतम रजसम मतलब विक्षेप शून्य, विक्षेप नहीं है मन के अंदर में। विक्षेप का हेतु क्या है, कारण क्या है विक्षेप का? विषयों का सुख। तो मन जो है जो विषयों की तरफ नहीं हो गया जा रहा है वो शांत रजसम कहलाया, शांत रजसम। अकल्मषम, लय का हेतु तमस है, वो भी चला गया। देखो भगवान ने दो शब्द यहाँ यूज किए, एक शांत रजसम जो रजोगुण को कह रहा है, इंगित कर रहा है, अकल्मषम जो है वो तमोगुण को इंगित कर रहा है। ये दो गुण जब आप जीत लोगे तब आपका मन प्रशांत होगा, तब आपका मन सत्वगुण में जाएगा। तो सत्वगुण में जाने का मतलब रजोगुण को शांत करना है, तमोगुण को शांत करना है। ऐसा योगी क्या कहलाता है? ब्रह्मभूत। अरे बाप रे बाप, ये भूत का नाम क्यों ले रहे हो आप? हमें ब्रह्मभूत कहेंगे बता। ब्रह्मभूत वो योगी जो ब्रह्म हो जाता है, उसको ब्रह्मभूत कहते हैं। हो गया ब्रह्म, हो गया वो, उसका सीमित व्यक्तित्व खत्म, इंडिविजुअलिटी एंडेड, और उस व्यक्ति को उत्तम सुख मिलता है, उत्तम सुख। और क्या होता है? 28वां श्लोक,
युञ्जन्नेवं सदात्मानं,
युञ्जन्नेवं सदात्मानं,
योगी विगत कल्मषः,
योगी विगत कल्मषः,
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम्,
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम्,
अत्यन्तं सुखमश्नुते,
अत्यन्तं सुखमश्नुते,
युञ्जन्नेवं सदात्मानं, योगी विगत कल्मषः, सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम्, अत्यन्तं सुखमश्नुते।
एवं युञ्जन आत्मानं सदा। सो एवं मतलब इस तरीके से, कैसा, कौन सा तरीका? जैसा तरीका जो है 24वें संकल्प प्रभवान से लेके 26वें एवं 27वें कुछ शब्द बताते हैं, जैसा भगवान ने 24, 25, 26वें श्लोक में बताया उस तरीके से। एवं मन सदा ध्यान में रहे, तो 24वें 25वें 26वें श्लोक में ध्यान की विधि बताई गई है, 24, 25, 26वें ध्यान की विधि बताई गई है, और 27वें और 28वें ध्यान का फल बताया गया है। विधि बताई भगवान ने, फल भी बताया 27वें और 28वें। योगी विगत कल्मस है, ऐसा प्रयास से योगी पाप पुण्य से मुक्त, विगत कल्मस है, योगी सत्व रजस तमस से फ्री, मतलब अज्ञान से मुक्त हो जाता है। विगत कल्मस है, जैसे ही हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हुई, जैसे ही आत्मा के साथ में संस्पर्श हुआ, हमारा जीवत्व खत्म हो गया। जीवत्व खत्म हो गया मतलब हमारा अज्ञान खत्म हो गया। अज्ञान खत्म हो गया मतलब माया और उसके तीन गुणों के हम अतीत चले गए, उसके पार चले गए, उसके उस पार चले गए। योगी विगत कल्मस है, अब उसका कोई पाप पुण्य नहीं रहा। पिछला अकाउंट क्या होगा, प्रारब्ध क्या होगा, ये सब हम जानते हैं, वो सारे के सारे निर्बीज हो गए। प्रारब्ध को वह भोग करना पड़ेगा। संचित कर्म जो भी आगे के कर्म किए हुए हैं, जो भी पिछले जन्म में किए हैं कि उसके पूर्व के जन्म में किए हुए हैं, या इस जन्म के जो हैं जिन्होंने फल नहीं दिया अभी तक, जो संचित हैं, वो सारे के सारे कर्म निर्बीज हो जाते हैं, रोस्टेड सीड हो जाते हैं वो, और फिर अंकुरित नहीं होंगे, कोई फल नहीं देंगे, खत्म हो गए वो। मगर प्रारब्ध, जिस सुख और दुख को भोगने के लिए ये शरीर हमें मिला है, वो सुख और दुख भोगना पड़ेगा, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। ज्ञानी को भी प्रारब्ध भोगना है, अज्ञानी को भी प्रारब्ध भोगना है। अज्ञानी जो है जब दुख पाता है तो रोता है, ज्ञानी जब दुख पाता है तो उसको पता लगता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर भोग रहा है, भोगने दो, भोग के ये खत्म होगा, भोग लेते हैं इसको भी। हम लोग का ये समष्टि प्रारब्ध है, कोरोना आया है, भोगना होगा, भोग लेते हैं, भोग के चला जाएगा, ये भी जाएगा। अच्छा, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम उष्णते, उस योगी को अत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, अत्यंतम बहुत, ऐसा सुख जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। देखो उस आत्म सुख और विषय सुख को आप कैसे अलग करोगे, कैसे समझोगे? विषय सुख जो है देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, एक देश में मिलता है दूसरे देश में नहीं है, मिलता है एक काल में मिलता है दूसरे काल में नहीं है, एक वस्तु में है दूसरी वस्तु में नहीं है, है? मगर वो आत्म सुख, उसके अंदर कोई सीमा नहीं है, देश की सीमा नहीं है। आप चाहे यहां बैठे हो, चाहे जहां भी जाओ, अमेरिका जाओ या इंडिया जाओ या जहां भी जाओ, आप हर देश में आपको आत्म सुख मिलता रहेगा, हर काल में मिलेगा, सवेरे हो शाम हो रात हो नींद में हो जागे हो, हर काल में मिलेगा और वस्तु के बिना मिलेगा। हमको सुख कैसे मिलता है संसार में? वस्तुओं के रहने पर, वस्तुओं के मिलने पर सुख प्राप्त होता है। और ये आत्म सुख कैसा है? बिना वस्तु के, कोई वस्तु नहीं चाहिए हमें, किसी को भी नहीं चाहिए, हम सुखी हैं, हम आत्म सुख। तो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, यह सुख ब्रह्म के साक्षात्कार से आता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। देखो सारे निर्विकल समाधि के पीछे अद्वैत वेदांत का ज्ञान होना चाहिए। अगर अद्वैत वेदांत का ज्ञान ना हो, ब्रह्म का ज्ञान ना हो, तो अगर आप समाधि में भी जाओगे वापस आओगे तो फिर के फिर जी भी रहोगे। समाधि के अभ्यास से बिना ब्रह्म के ज्ञान के भी समाधि लग सकती है, मगर उस समाधि का फल क्या होगा? उस समाधि का फल ये होगा कि समाधि से जब आप उठोगे तो फिर आप जीव के जीवो। जैसे हर रात को हम सोने जाते हैं तो हम अगर डॉक्टर इंजीनियर हैं तो हम सवेरे उठ के भी डॉक्टर इंजीनियर ही रहते हैं। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता या इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन जाता है, वही रहता है। उसी तरह से अगर समाधि में आप अगर बिना अद्वैत वेदांत के आप अगर सफल भी हो गए तो उसमें क्या होगा? आप वही रहोगे जो थे। क्या थे आप भाई? आप जीव थे, जीव ही रहोगे। अच्छा, अब ये 24 से लेकर 28 तक जो है ना, इसको जो है छठवें अध्याय का हृदय कहा जाता है। हृदय है ये, हार्ट है। 24 से 28, 24 25 26 27 28 ये जो है चैप्टर 6 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं। सारी साधना एवं फल यहां पर बताया गया है। ओके। ओम
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।